श्री गणेशाय नमः। ओम श्री लक्ष्मी व्रत बृहस्पतिवार को करना। श्री लक्ष्मी व्रत पालन करते समय ध्यान दें। यह व्रत धन सम्मान कीर्ति प्राप्ति के लिए और श्री लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए किया जाता है। व्रत पालन करने वाली स्त्री तन से शुद्ध और मन से आनंदित होनी चाहिए। व्रत का आरंभ मार्गशीर्ष मास के प्रथम गुरुवार को किया जाए, अंतिम गुरुवार को समाप्ति की जाए। पूजा पाठ विधि के साथ हर गुरुवार को श्री लक्ष्मी व्रत किया जाए। पूरे साल हर गुरुवार को अपने इष्ट देव या देवता के सामने बैठकर श्री महालक्ष्मी महात्म्य पढ़ें या सुने। व्रत के दिन कुछ न खाएं, निराहारी रहें। रात को अपने परिवार के साथ मिष्ठान्न का सेवन करें। गुरुवार के दिन श्री लक्ष्मी की पूजा करते समय और कहानी महात्म्य पढ़ते या सुनते समय मन से नितांत आनंदित रहना आवश्यक है। व्रत के दिन परिवार के सभी लोगों का प्रसन्न चित्त रहना आवश्यक है। जब किसी कारण स्वयं व्रत करने में कुछ असमर्थता हो तो अन्य किसी भावनायुक्त व्यक्ति के द्वारा व्रत पूर्ण करें, किंतु उपवास स्वयं ही करें। अन्य किसी उपवास के कारण यदि ये गुरुवार व्रत बीच में आ जाए तो गुरुवार व्रत करने में कुछ भी बाधा नहीं है। सिर्फ रात को भोजन ही ना करें, अपितु पूजा पाठ भी करें। इस पोथी के पठन और श्रवण का लाभ पड़ोसी, रिश्तेदार, मित्र उठा सकते हैं। पोथी के पठन श्रवण से व्रत का पुण्य लाभ होता है, ये बात ध्यान में रखें। मार्गशीर्ष मास के अंतिम गुरुवार को यानी समाप्ति के दिन सात कुमारियों या सौभाग्यवतियों को निमंत्रण देकर घर बुलाएं। उनके आने पर उन्हें हल्दी कुमकुम का सौभाग्य अलंकार लगाएं। पूजा आरती के बाद प्रसाद में एक फल और इस पोथी की एक प्रति हर एक को भेंट देकर प्रणाम करें। ये है इस व्रत की समाप्ति। व्रत को प्रारंभ मार्गशीर्ष मास के प्रथम गुरुवार को ही करें, लेकिन किसी कारणवश रुकावट आ जाए तो किसी भी महीने के प्रथम गुरुवार को ही प्रारंभ करें। समाप्ति सिर्फ मार्गशीर्ष मास के अंतिम गुरुवार को ही करना नितांत आवश्यक है। लक्ष्मी धन संपत्ति प्राप्ति के लिए पुरुष भक्तों को इस पोथी में से श्री लक्ष्मी महात्म्य का पठन करना आवश्यक है। ओम श्री लक्ष्मी देव्यै नमः। श्री लक्ष्मी की पूजा पाठ पद्धति स्थापना एवं विसर्जन समाप्ति। अपने निवास की एक साफ सुथरी जगह पर गोबर का लेपन करें या फिर उसे गीले कपड़े से पोंछकर साफ सुथरा कर दें। ऐसी जगह पर स्वस्तिक चिन्ह की रंगावली का रेखांकन करके उस पर चौरंग या लकड़ी का पाट रखें। पाट के चारों तरफ से ही रंगावली करें। पाट के मध्य कुछ चावल या गेहूं चक्राकार रखें। उन पर हल्दी कुमकुम लगाई जाए। स्वच्छ जल से भरे हुए ताम्र कलश में दुर्वाएं, कसैली, सुपारी, सिक्का छोड़ें। कलश के ऊपर पांच जाति के पांच पेड़ों की टहनियां या पांच जाति के पेड़ों के पांच पत्ते रखकर उन पर एक नारियल रखें। यही नारियल पाठ की समाप्ति के समय तक रहेगा। कलश के बाहरी भाग में हल्दी कुमकुम द्वारा अंगुली से रेखांकन करें। इस प्रकार से सजाए हुए कलश को पाट पर फैलाए हुए चावल या गेहूं के चक्राकार के मध्य में रखें। इस पुस्तिका में श्री लक्ष्मी का चित्र यंत्र मंत्र के साथ छपा है, जिसे धीरे से निकालकर कार्डबोर्ड पर चिपकाएं या फ्रेम में बिठाएं। ये तस्वीर कलश को आधार देकर सामने रखें, पास ही सवा रुपया सिक्के के रूप में रखें। समाप्ति तक यही सवा रुपया पूजा विधि के समय लेना आवश्यक है। समाप्ति के बाद यही सवा रुपया अपने निजी कोष में रखें। इसके बाद जल का आचमन करें। स्नान, हल्दी कुमकुम लगाना, फूल चढ़ाना, धूप दीप अगरबत्ती लगाकर प्रणाम करना, नैवेद्य अर्पण करना, ये है पंचोपचार पूजा। श्री लक्ष्मी को स्नान कराते समय ध्यान रखें कि तस्वीर खराब न हो। दुर्वा और तुलसी पत्र से तस्वीर पर कुछ जल सिंचन हल्के हल्के करें। प्रसाद के तौर पर केले या अन्य फल रखें, साथ साथ दूध भी अवश्य रखें। सामने पाट पर बैठकर श्री लक्ष्मी व्रत कहानी पढ़ें, बाद में श्री लक्ष्मी महात्म्य पढ़ें या पढ़ने वाले से श्रवण करते रहें। नैवेद्य को अर्पण करके मां लक्ष्मी के सामने हाथ जोड़कर बैठें और इस पोथी में दिए गए श्री लक्ष्मी नमनाष्टक पढ़ें। इसके उपरांत अपने मन की इच्छा देवी के सामने मन ही मन प्रकट करें तथा उसे पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद आरती करके धूप दीप अर्चना कर देवी का साष्टांग वंदन करें। रात को फिर श्री लक्ष्मी की पंचोपचार पूजा करके मिष्टान्न का महानैवेद्य देवी को अर्पण करें। गाय के लिए नैवेद्य का एक पान अलग रखें। इसके बाद परिवार के सभी लोग आनंद से भोजन करें। दूसरे दिन सुबह स्नान के पश्चात ताम्र कलश में रखी हुई टहनियां और पत्ते निवास की पांच विविध जगहों पर रखें। कलश में रखा हुआ जल समुद्र, नदी, तालाब या तुलसी वृंदावन में छोड़ दें और पूजा स्थल पर हल्दी कुमकुम लगाकर लक्ष्मी का स्मरण करके वंदन करें। यह व्रत पूर्ण करने वालों को मैं सुखी करूंगी, ये बात स्वयं श्री लक्ष्मी ने पद्म पुराण में कही है। पूजा की समाप्ति विसर्जन के उपरांत ताम्र कलश में रखा हुआ पैसा, कसैली, ताम्र कलश पर रखा हुआ नारियल व पहले दिन से इकट्ठा किया हुआ सारा निर्माल्य समुद्र, सरिता या तालाब के बहते पानी में छोड़कर वंदन करें। ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी भ्यो नमः। श्री लक्ष्मी व्रत की कहानी, बृहस्पतिवार की कहानी। सुनिए सुनिए भावुक भक्त जनों, सुनिए श्री लक्ष्मी व्रत की कहानी। यह कहानी श्रवण करके क्या लाभ होता है? दुख दारिद्र नष्ट हो जाता है, श्री लक्ष्मी की कृपा होती है, धन दौलत की प्राप्ति होती है, संतति दीर्घायुषी होती है, मन की कामना पूर्ण होती है। श्री लक्ष्मी विविध रूपिणी है, लक्ष्मी के अनेक नाम हैं। कैलाश में रहने वाली पार्वती, श्री रामधी की सिंधु कन्या, स्वर्ग की श्री महालक्ष्मी, भूलोक में रहने वाली लक्ष्मी, ब्रह्मलोक की सावित्री, गोलोक की राधिका, वृंदावन में रहने वाली रासेश्वरी, चंदन वन की चंद्रा, चंपक वन की विरजा, पद्म वन की पद्मावती, मालती वन की मालती, कुंदन वन की कुंददंती, केतकी वन की सुशीला, कदंब वन की कदंब माला, राजगृह में रहने वाली राजलक्ष्मी और घर घर की गृहलक्ष्मी, ऐसे विविध रूप से और नाम से लक्ष्मी देवी प्रसिद्ध हैं। ऐसी श्री महालक्ष्मी देवी की ये कहानी है। द्वापर युग की, सौराष्ट्र देश की, वहां भद्रश्रवा नाम का एक राजा राज्य करता था। वो पराक्रमी था, चार वेद, छह शास्त्र, 18 पुराण का ज्ञान उन्हें प्राप्त था। उसकी रानी का नाम सूरत चंद्रिका। वो लावण्यमयी, सुलक्षणा और पतिव्रता थी। उस दंपति को 8 संतानें थी, 7 पुत्र और 1 कन्या। कन्या का नाम था श्यामबाला। एक दिन श्री लक्ष्मी देवी के मन में आया कि राजा के राजगृह में जाकर निवास करें, जिसके कारण राजा अपनी प्रजा को अधिक सुख देगा। निर्धन के घर में अगर मैं रहूं तो वो सारी धन संपत्ति का हरण कर लेगा। इसलिए लक्ष्मी ने एक वृद्धा ब्राह्मण स्त्री का रूप लिया, हाथ में सहारे के लिए एक लकड़ी ले ली और उसका सहारा लेते लेते वो सूरत चंद्रिका रानी के महल के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर रानी की एक सेविका सामने आ गई। उसने वृद्धा स्त्री की पूछताछ की। वृद्धा ने अपना नाम, पति का नाम, रहने का स्थान आदि की समुचित जानकारी दे दी। वृद्धा स्त्री के रूप में लक्ष्मी माता कहने लगी, मेरा नाम है कमला, पति का नाम है भुवनेश, हम लोग द्वारका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पूर्व जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वो वैश्य बहुत दरिद्र था, हर दिन उन दोनों पति पत्नी में झगड़ा हो जाता था। उसका पति उसके साथ बहुत मारपीट करता था। इस हालत से वो परेशान हो गई और घर छोड़कर चली गई। वन में वो बिना कुछ खाए पिए भटकती रही। उसकी वैसी हालत देखकर मुझे उस पर दया आ गई। धन संपत्ति देने वाली श्री लक्ष्मी व्रत की कहानी मैंने उसे सुनाई। मेरे कथनानुसार उसने लक्ष्मी व्रत का पालन किया। श्री लक्ष्मी देवी उससे प्रसन्न हो गई। इस कारण उसका दारिद्र नष्ट हो गया। संतति संपत्ति से उसका घर भर गया। उसके जीवन में आनंद छा गया। लक्ष्मी व्रत करने के प्रताप से दोनों मृत्यु के उपरांत लक्ष्मी लोक में वैभव से रहने लगे। जितने साल उन्होंने लक्ष्मी व्रत किया उतने 1000 वर्ष उन दोनों को सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब तो उन्हें राजकुल में जन्म प्राप्त हुआ है, लेकिन रानी को अभी अपने व्रत का विस्मरण हो गया है। उसे स्मरण याद दिलाने के लिए मैं यहां आ गई हूं। रानी की सेविका ने उससे लक्ष्मी व्रत की जानकारी पूछी, पूजा विधि की भी जानकारी ली। वृद्धा रूपधारी श्री लक्ष्मी ने उसे लक्ष्मी व्रत की जानकारी एवं महात्म्य बताया। इसके उपरांत वो रानी की दासी उस वृद्ध स्त्री का उपकार मानकर रानी को उसका संदेश देने के लिए चली गई। राज वैभव में रहने वाली रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड था। वो उन्मत्त हो गई थी। वृद्धा का संदेश सुनकर वो यकायक क्रोध में आ गई और वृद्धा ब्राह्मण स्त्री को अपमानित किया। लेकिन वो वृद्धा स्त्री साक्षात लक्ष्मी थी, ये बात रानी को मालूम नहीं थी। रानी का ये रूप देखकर लक्ष्मी को वहां रहना पसंद नहीं आया और वो वहां से निकल गई। कुछ ही दूर पर उसे श्यामबाला मिली। सारी जानकारी प्राप्त होने पर उसने उस वृद्धा स्त्री से क्षमा याचना की। तब लक्ष्मी को उस पर दया आई। उसने श्यामबाला को लक्ष्मी व्रत की जानकारी दी। वो दिन मार्गशीर्ष मास का प्रथम बृहस्पतिवार था। श्यामबाला ने भाव भक्ति से लक्ष्मी व्रत का पालन किया। इसकी फल प्राप्ति ये हुई कि सिद्धेश्वर नामक राजा के मालाधार नामक पुत्र के साथ उसका विवाह संपन्न हुआ। उसे बड़ा वैभव प्राप्त हुआ। वो अपने पति के साथ राज वैभव में रहने लगी। इधर लक्ष्मी कोपायमान होने के कारण राजा भद्रश्रवा और रानी सूरत चंद्रिका के राज्य का अस्त हुआ। वैभव ऐश्वर्य का लोप हुआ और उनकी दशा बड़ी शोचनीय बन गई। एक दिन सूरत चंद्रिका अपने पति से बोली, अपनी बेटी का पति राजा है, बड़ा वैभवशाली है, उनके पास जाओ, अपनी हालत का वर्णन करो, उसको दया आएगी और वो कुछ धन संपत्ति अवश्य देगा। भद्रश्रवा श्यामबाला के पति के राज्य में गया, एक तालाब के किनारे विश्राम करने के लिए बैठ गया। उसी समय श्यामबाला की कुछ दासियां जलकुंड लेकर जल भरने के लिए वहां आईं। राजा भद्रश्रवा को उन्होंने देखा। उन दासियों ने उनके नाम ग्राम के बारे में पूछताछ की। उन्होंने सब कुछ दासियों को बतलाया। वो अपनी रानी श्यामबाला का ही पिता है, ये बात समझने पर सभी दासियां दौड़ते हुए श्यामबाला के पास आईं और सारी जानकारी श्यामबाला को बताई। श्यामबाला अपने पिताजी को बड़े ठाट बाट के साथ अपने प्रासाद में लाई, उनका आवभगत किया, पिताजी को मिष्टान्न भोजन खिलाया, उनका आदर सत्कार किया। वो जब वापस जाने को निकले तब उसने उन्हें हांडा भर धन भेंट के रूप में दिया। भद्रश्रवा अपने घर पहुंच गया। सूरज चंद्रिका को अति प्रसन्नता हुई। उसने भेंट में मिला हांडा खोला तो अंदर क्या था? हांडे में धन नहीं था, हांडे में कोयला भरा हुआ था। तो लक्ष्मी की अवकृपा से ही ये चमत्कार हो गया था। कुछ दिन बीत गए। अब सूरत चंद्रिका अपनी लड़की के घर गई। वो दिन था मार्गशीर्ष मास का अंतिम बृहस्पतिवार। श्यामबाला ने लक्ष्मी व्रत किया था। उसने अपनी माताजी से भी ये व्रत करवाया। सूरत चंद्रिका अपने घर वापस आ गई। उसने लक्ष्मी व्रत किया था, इसलिए उसे गतकाल का वैभव फिर से प्राप्त हुआ। राज ऐश्वर्य फिर प्राप्त हुआ। कुछ दिन बाद श्यामबाला मायके में आई, लेकिन उसने अपने पिताजी को कोयले दिए थे। ये गुस्सा सूरत चंद्रिका के मन में अब भी था, इसलिए श्यामबाला को वहां किसी ने पूछा तक नहीं। उसका वहां अनादर किया गया। लेकिन श्यामबाला अपनी माताजी पर क्रोधित नहीं हुई। वो वहां से निकल गई। निकलते समय उसने वहां से थोड़ा सा नमक लिया था। निवास पहुंचने पर श्यामबाला के पतिदेव ने पूछा कि मायके से क्या क्या लाई। तब वो बोली, राज्य का सार लेकर आई हूं। पतिदेव बोले, इसका मतलब? उसने जवाब दिया, कुछ दिन ठहरो, सारी बात समझ में आ जाएगी। एक दिन पतिदेव को भोजन के खाद्य पदार्थ नमक के बिना रुचिहीन लगे। श्याम बाला ने भोजन की थाली में थोड़ा सा नमक रख दिया। जब पतिदेव ने नमक को खाद्य पदार्थ में मिलाया तो भोजन रुचिमय लगने लगा। यही है राज्य का सार। श्याम बाला के पति को ये बात पूर्ण रूप से समझ में आ गई। संक्षेप में, इस प्रकार से जो कोई श्री लक्ष्मी व्रत श्रद्धायुक्त भाव से करेगा तो उसे लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी, सुख शांति का लाभ होगा, मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, लेकिन ऐश्वर्य प्राप्त हो जाने के बाद भी लक्ष्मी व्रत करने को कभी न भूलें। हर बृहस्पतिवार को पोथी का पठन श्रवण अवश्य करें। ऐसी ये श्री लक्ष्मी व्रत की कहानी, बृहस्पतिवार की कहानी सभी को सफलता प्राप्त कराने वाली हो। शुभम भवतु। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री लक्ष्मी देव्यै नमः।